بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔ ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا شبارمبھ ہم پوتر قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ نساء کی پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے منوشیو، اپنے اس پالنہار سے ڈرو جس نے تم سب کی ایک استھتو سے سرشٹی کی اور اسی سے اس کے جوڑے کی بھی رچنا کی، اور پھر دونوں سے بڑی سنکھیا میں پروشوں اور مہلاؤں کو پھیلا دیا، اور اس ایشور سے ڈرتے رہو جس کے دوارا تم ایک دوسرے سے پرشن کرتے ہو۔ ایشور کو درشتی میں رکھو اور اپنے خونی رشتے داروں ارتھات نکٹ پریجنوں کے سمبندھ میں کوئی کمی نہ کرو، کہ نسندے ایشور تمہارے کرموں کا نریکشک ہے۔ اور اناتھوں کو ان کی سمپتی دے دو، اور اپنے خراب اور اپوتر مال کو ان کی اچھی اور پوتر سمپتی سے نہ بدلو، تتھا ان کی سمپتی کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا نہ جاؤ، کہ یہ بہت بڑا پاپ ہے۔
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। दोस्तों हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। हो जाती तो और दोस्तों हमारे आज जो है वो सोमवार है, मेर माह की 4, सफर की 29 और सितंबर की 26 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा प्रस्तुत की जाएगी। राजनीतिक चर्चा के उपरांत हम आपको हजरत इमाम रजा अलैहि सलाम की शहादत पर विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विश्व दर्पण। तो दोस्तों ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा और अभी आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। दोस्तों अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। दंगाइयों और उपद्रवियों के विरुद्ध जनता मैदान में विदेशी एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। राष्ट्रपति रईस ने अस्पताल में घायलों का हालचाल पूछा। भारत सहित दुनिया के 32 देशों ने सुरक्षा परिषद के ढांचे पर उठाए सवाल। पाकिस्तान में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ। और अब आप मरियम मेहरदादी और अख्तर अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए।
पिछले ईरान की राजधानी तेहरान समेत कुछ अन्य शहरों में विदेशी शक्तियों के एजेंटों द्वारा की जा रही साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लाखों की संख्या में ईरान की जनता ने सड़कों पर उतरकर उपद्रवियों के खिलाफ सरकार से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्वर्गवास और इमाम हसन अलैहि सलाम की शहादत के दिन रविवार को लाखों की संख्या में ईरानी जनता ने हालिया दिनों में इस्लामी आस्था और प्रतीकों का अनादर करने वालों का विरोध किया। उपद्रवियों के खिलाफ राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में उम्मत रसूलल्लाह नामक रैलियों का आयोजन हुआ, जिनमें लाखों की संख्या में आम जनता ने इन रैलियों में भाग लेकर जहां ईरान की इस्लामी व्यवस्था के दुश्मनों की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया, वहीं देश की सरकार से मांग की कि विदेशी शक्तियों के ऐसे सभी एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो उपद्रव करने वालों के लिए हमेशा के लिए सबक बन जाए।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने पिछले दिनों की घटनाओं में घायल होने वाले नागरिकों का अस्पताल जाकर हालचाल पूछा। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने तेहरान के एक अस्पताल का दौरा किया और दंगाइयों के हाथों घायल होने वाले और उनके परिजनों से मुलाकात के दौरान नागरिकों के उपचार के बारे में जानकारी हासिल की और उचित का विश्वास दिलाया। याद रहे कि ईरानी जनता के दुश्मनों और अमेरिका तथा इसराइल के इशारों पर हंगामे और दंगे महसा नामिनी नामक लड़की की मौत के बहाने शुरू किए गए थे। हालांकि इस बारे में कानूनी जांच अभी तक पूरी भी नहीं हुई थी।
इस्लामी गणतंत्र ईरान का कहना है कि ईरानी राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा के दावेदार देश अपने झूठे नारे लगाना बंद करें और ईरानी राष्ट्र के विरुद्ध कई दशकों से जारी अमानवीय प्रतिबंधों को खत्म करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर ईरान के संबंध में अमरीका और पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए लिखा कि ईरान के मुकाबले में दुश्मन देशों का रवैया हमेशा दोगला और दोहरा रहा है और ईरान में होने वाले हालिया दंगों में अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों के राजनीतिक नेताओं ने और इसी तरह इन देशों के मीडिया या उनके पिट्ठू मीडिया सहित इन देशों से प्रसारित होने वाले फारसी भाषा के टीवी चैनलों ने दंगाइयों और उपद्रवियों का भरपूर समर्थन करके ईरानी राष्ट्र के हक में जितना अत्याचार कर सकते थे किया, किंतु लाखों की संख्या में ईरानी जनता ने सड़कों पर निकलकर और मैदानों में जमा होकर अपने देश की व्यवस्था और अपने देश और इस्लामी क्रांति के समर्थन और वफादारी का ऐलान तथा दंगाइयों और फितना फसाद फैलाने वालों से घृणा व्यक्त करके दुश्मनों की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया, जबकि उनका यही मीडिया ईरानी जनता के इन प्रदर्शनों पर खामोश रहा या फिर इन प्रदर्शनों को सामान्य दिखाने का प्रयास किया।
ईरान के साइबर स्पेस के राष्ट्रीय केंद्र के प्रमुख ने ऐलान किया है कि ईरान की सरकारी वेबसाइट पर साइबर हमले की खबर केवल अफवाह है। ईरान की संसद की प्रिजाइडिंग कमेटी के प्रवक्ता सैयद निजामुद्दीन मूसवी ने भी कहा कि संसद मजलिस शुराए इस्लामी की किसी भी वेबसाइट को हैक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सांसदों का नाम और उनका टेलीफोन नंबर संसद की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर है ताकि रिपोर्टर और जनता उनसे आसानी से संपर्क कर सके। ज्ञात रहे कि ईरान विरोधी टीवी चैनलों ने अपने प्रोपेगेंडों और निराधार दावों को जारी रखते हुए दावा किया था कि एनानिमस नामक संदिग्ध हैकर ग्रुप ने ईरान की संसद की वेबसाइट को हैक कर लिया है।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच संदेशों का आदान प्रदान मध्यस्थों और अन्य देशों के अनेक विदेश मंत्रियों के द्वारा हो रहा है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने न्यूयॉर्क में सीरिया के विदेश मंत्री फैजल मकदास से मुलाकात में कहा कि तेहरान अपने तार्किक दृष्टिकोण के आधार पर कूटनीति के रास्ते पर अग्रसर है और एक स्थायी समझौते तक पहुंचने पर बल देता है जो आर्थिक हितों तक पहुंच की गारंटी दे। विदेश मंत्री ने सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और पश्चिमी एशिया के क्षेत्र को अस्थिर करने वाले रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि हालिया वर्षों में ईरान और सीरिया के बीच आतंकवाद और कट्टरपंथ से मुकाबले के क्षेत्र में सहयोग और आस्थाना शांति वार्ता ने सीरिया की स्थिरता और शांति की बहाली में अहम रोल अदा किया है।
पैगंबर इस्लाम के पौत्र हजरत इमाम अली रजा अलैहि सलाम के शहादत के दिवस के अवसर पर पूरा ईरान पवित्र नगर मस्जिद में लाखों की संख्या में श्रद्धालु मस्जिद पहुंच गए। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी कैलेंडर के दूसरे महीने सफर की 30 तारीख बराबर 27 सितंबर मंगलवार को पैगंबर इस्लाम के पौत्र हजरत इमाम अली रजा अलैहि सलाम की शहादत का दिन है। इस दिन पूरी दुनिया में जहां जहां पैगंबर इस्लाम के परिजनों को चाहने वाले हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ शोक सभाओं का आयोजन करते हैं और इमाम रजा अलैहि सलाम का गम मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ईरान के पवित्र नगर मस्जिद में जहां इमाम अली रजा अलैहि सलाम का रोजा है लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं।
यमन में क्लस्टर बम के विस्फोट में 10 यमनी बच्चे घायल हो गए हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अलहुदैदा प्रांत के अलजाह इलाके में प्रतिबंधित क्लस्टर बम के विस्फोट में 10 यमनी बच्चे घायल हो गए। बताया जाता है कि क्लस्टर बम सऊदी अरब द्वारा आरंभ में किए गए हमलों के समय का था जो उस समय नहीं फटा।
भारत सहित 32 देशों ने मौजूदा वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार करने की मांग की है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत 32 देशों ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर अपने संयुक्त वक्तव्य में कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था को अधिक समावेशी और सहभागितापूर्ण बनाने के लिए काम करने के प्रति संकल्पबद्ध हैं ताकि विकास संबंधी चुनौतियों, गरीबी, जलवायु परिवर्तन, महामारी, खाद्य सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संकटों और आतंकवाद का समाधान किया जा सके।
भारत के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा है कि उन्होंने भारत का अगला अटॉर्नी जनरल बनने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। रोहतगी ने बताया कि उनके फैसले के पीछे कोई खास वजह नहीं है। केंद्र ने 91 वर्षीय मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की जगह लेने के लिए इस महीने की शुरुआत में रोहतगी को पेशकश की थी। वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होगा।
भारत के उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में एक रिसॉर्ट से 5 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के आरोप में शुक्रवार को भाजपा नेता के रिसॉर्ट संचालक
पुत्र और उनके दो अन्य कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। पौड़ी के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता वंतारा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी और 29 सितंबर से लापता थी।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें दो मेजर सहित 6 सुरक्षाकर्मी मारे गए। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के क्षेत्र हरनाई में गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दो पायलट सहित 6 सुरक्षाकर्मी मारे गए।
पश्चिमोत्तर बांग्लादेश में कोरोटा नदी में श्रद्धालुओं को ले जा रही एक अनोखा पलटने से कम 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लापता है। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले में उस समय हुई जब श्रद्धालु महालया के मौके पर नाव में सवार होकर बोधेश्वरी मंदिर जा रहे थे। पंचगढ़ के बोड़ा उप जिले के प्रशासनिक प्रमुख सुलेमान अली ने संवाददाताओं से कहा कि नाव पलटने की घटना में लगभग 24 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
श्रोताओं का कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम एक नजर डालेंगे ईरान के विदेश मंत्री की न्यूयॉर्क में जारी व्यस्तता पर। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम एक नजर डालेंगे जर्मन चांसलर के पश्चिम एशिया के देशों के दौरे के उद्देश्यों पर। भारत में कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में एक नई समस्या खड़ी हो गई है, इस विषय में भी हम एक रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे। तो राजनीतिक चर्चा के विषय यही हैं। शुरू करते हैं विदेश मंत्री की न्यूयॉर्क में जारी व्यस्तता से। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान न्यूयॉर्क की यात्रा पर हैं, जहां वो लगातार अनेक देशों के विदेश मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों से मुलाकातें कर रहे हैं। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए अली रजबी की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं रविश जैदी।
ईरान के विदेश मंत्री आजकल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क की यात्रा पर हैं। इस दौरान उनका वहां एक एक क्षण काफी गहमा गहमी वाला रह रहा है। सत्र के इधर वो एक दिन में कई कई देशों के अपने समकक्षों और अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इराक, कुवैत, श्रीलंका, आर्मेनिया, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, इरिट्रिया, निकारागुआ और वेनेजुएला के राष्ट्रपतियों से भेंटवार्ता की। इन सभी मुलाकातों में उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार और विकास पर बल दिया और इस बात पर भी जोर दिया कि इन क्षमताओं को अधिकतम उपयोग में लाया जाना चाहिए।
دکترین سیاست خارجی متوازن
ودیش منتری ادھر کچھ دنوں میں ہوئی ملاقاتوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیش کی 13ویں سرکار کی سنتولت ودیش نیتی کے سدھانت کو دیکھتے ہوئے ہم نے 5 مہادیپوں کے ودیش منتریوں سے ملاقات کرنا بہتر سمجھا۔ ہم نے اس بات پر زور دیا کہ سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے ہم پوری گمبھیرتا کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ امریکی پکش ہے جس میں آوشک ساہس اور گمبھیرتا होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमरीकी पक्ष ने हाल के दिनों में कई बार सूचित किया कि समझौते के प्रति हमारी नीयत अच्छी है, लेकिन हमने उनसे कहा कि पहले आप یہ سدھ کریں کہ واسطو میں آپ کی نیت اچھی ہے کی نہیں۔ اس بیچ ودیش منتری حسین امیر عبداللہ یان نے فلسطین کے مدے پر گٹ نرپیکش آندولن کے ودیش منتریوں کی بیٹھک میں بھی بھاگ لیا۔ اس بیٹھک میں بھی ایرانی ودیش منتری سمیت 8 ان دیشوں جس میں انڈونیشیا، الجیریا، دکشن افریقہ، زمبابوے، ملیشیا، کیوبا اور سنیکت عرب امارات کے ودیش منتریوں نے حصہ لیا۔ ایرانی ودیش منتری نے اس بیٹھک میں بولتے ہوئے فلسطین کے مدے کو جیوت رکھنے کے مہتو، اتی گرہن میں رہ رہے مول نواسیوں کا سمرتھن اور آزادی کی امنگوں کو ویوہارک بنا کر اپنے بھوش نردھارن کے حق کو پریوگ کرنے پر بل دیا۔ ودیش منتری بتا رہے ہیں کہ میں نے اس بیٹھک میں فلسطین کے مدے کو لے کر اسلامی گڑتنتر ایران کے اسٹینڈ اور اویدھ جنو شاسن دوارا فلسطین کی جنتا پر کیے جا رہے اتیاچاروں اور اس کے اپرادھوں کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پشچمی ایشیا میں اتی گرہن اور لمبے سمے سے چلے آ رہے سنگھرش کی سمسیا کو ایران کی لوک تانترک پہل کے کاریانویان اور فلسطین میں ایک راشٹریہ جنمت سنگرہ کے آیوجن کی کہ جس میں فلسطین کے سبھی مول نواسی شامل ہوں، مسلمان، عیسائی اور یہودی، اس بات کو بیٹھک میں وستار سے پیش کیا۔ اسی طرح نیو یارک ٹائم کے ساتھ انٹرویو میں ایرانی ودیش منتری نے شیتریہ مدوں، پرمانو سمجھوتے اور ان گارنٹیوں کے بارے میں کہ جو ایران کو دی جانی چاہیے کے سمبندھ میں اسلامی گڑتنتر ایران کے اسٹینڈ کو بیان کیا۔ نیو یارک استھت سنیکت راشٹر سنگھ کاریالے سے IRIB کے لیے علی رجبی کی رپورٹ۔
جرمن چانسلر فارس کھاڑی کے دیشوں کے دورے پر نکلے ہیں، جس کا مقصد جرمنی اور یورپی دیشوں کے سامنے موجود ارجا سنکٹ کے سمادھان کے راستے کھوجنا ہے۔ جائزہ پیش کر رہے ہیں قائم رضوی۔
جرمنی کے چانسلر فارس کی کھاڑی کے دیشوں کی 2 دیوسی یاترا پر سعودی عرب کے نگر جدہ پہنچے۔ سعودی عرب کی یاترا کے بعد جرمنی کے چانسلر اولاف اسکولز قطر اور سنیکت عرب امارات کی یاترا کریں گے۔ اس یاترا میں مولتا ارجا کے بارے میں وچار ومرش کیا جائے گا۔ سعودی ادھیکاریوں سے جرمنی کے چانسلر یوکرین یدھ، یمن سنکٹ اور ایران کے پرمانو کارکرم کے سمبندھ میں بھی بات چیت کریں گے۔ فارس کی کھاڑی کی یاترا سے اولاف اسکولز کا ادیش ارجا کے بارے میں تلاش کرنا ہے۔ اپنی اس یاترا سے وہ جرمنی اور یورپ کے لیے تیل اور گیس کی آپورتی کو سنشچت کروانا چاہتے ہیں۔ یوکرین یدھ کے بعد امریکہ کے مارگ درشن پر یورپ، وشیش کر جرمنی نے روس سے تیل اور گیس کی خرید پر پرتیبندھ لگا دیا تھا۔ اس کام کے مادھیم سے یورپی دیش امریکہ کے ساتھ مل کر روس پر بھاری دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ حالانکہ اس نیتی کا یورپ کے لیے الٹا نتیجہ سامنے آیا۔ امریکہ کے اکساوے میں جب یورپی دیشوں نے روس کے ورودھ پرتیبندھ لگائے تو اس کے جواب میں روس نے یورپ کے لیے تیل اور گیس کی سپلائی کو یا تو بہت ہی سیمت کر دیا یا پھر اسے بند کر دیا۔ اس وجہ سے ورتمان سمے میں ارجا کو لے کر یورپ کی استھتی بہت ہی دیانیہ ہو گئی ہے۔ اس بیچ یورپ کی سب سے بڑی اور وشو کی مہتوپورن ارتھویوستھا کے روپ میں جرمنی کو کئی پرکار کی جٹلتاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ روس سے گیس آیات کیا کرتا تھا۔ ایک آرتھک رپورٹ بتاتی ہے کہ جرمنی کو پچھلے 50 ورشوں میں سب سے ادھک گمبھیر آرتھک سنکٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جن آرتھک وشیشجوں نے اس رپورٹ کو تیار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کرے شکتی میں ہراس، مہنگائی میں بڑھوتری اور ارجا کے مولیوں میں لگاتار وردھی نے جرمن واسیوں کے لیے آرتھک مندی کی بھومیکا پرشست کر دی ہے۔ حالانکہ جرمنی کے ادھیکاریوں نے یہ دعویٰ کیا ہے جاڑوں کا موسم آنے سے پہلے تک دیش کے گیس بھنڈاروں کو 85% تک بھر دیا جائے گا، کنتو جانکاروں کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ امریکہ جس کے کہنے پر جرمنی نے روس کے ورودھ کڑے پرتیبندھ لگائے تھے وہ جرمنی کو گیس کی ضرورت کو پورا کرنے میں اکشم ہے۔ اب اگر دوسرے دیشوں کی بات کی جائے تو وہ بھی الپ اودھی میں جرمنی کی ارجا کی آوشکتا کی پورتی نہیں کر پائیں گے۔ اس حساب سے آنے والے جاڑوں تک جرمنی کے لیے اپنی ضرورت کی گیس کا پربندھ کرنا بہت کٹھن ہو جائے گا۔ कुछ जानकारों का तो यहां तक कहना है कि यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप विशेषकर जर्मनी के लिए जो आर्थिक दुष्परिणाम सामने आए हैं उनको समाप्त होने में 20 वर्षों का समय लग सकता है। टीकाकारों का ये कहना है कि यूरोप को ऐसी हालत में इसलिए गुजरना पड़ रहा है कि उसने बिना सोचे समझे यूक्रेन में युद्ध में रूस के विरुद्ध अमरीका का अंधा समर्थन किया है।
भारत में कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है। कांग्रेस की राजस्थान इकाई में एक नया संकट सामने आ गया है जिसके बाद भाजपा राष्ट्रपति शासन लगाने के संकेत देने लगी है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा के बीच राजस्थान में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। इसके बाद से चर्चा थी कि गहलोत को अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा और ऐसी संभावना थी कि उनकी जगह सचिन पायलट लेंगे और सोनिया गांधी ने इस मुद्दे को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट से बात भी की थी, लेकिन सचिन पायलट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा से पहले ही राजस्थान कांग्रेस में बगावत हो गई और अशोक गहलोत खेमे के लगभग 90 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले को सुलझाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को हर एक बागी विधायक से बात करने का निर्देश दिया और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर उनसे रिपोर्ट मांगी। कांग्रेस के बागी विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद के लिए गहलोत खेमे के उन 102 विधायकों में से किसी को चुना जाए जिन्होंने वर्ष 2020 में सचिन पायलट और उनके समर्थकों की बगावत के बाद सरकार को गिरने से बचाया था। इन विधायकों ने दोनों नेताओं के सामने 3 शर्तें रखते हुए मिलने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि आलाकमान इन शर्तों पर सहमत नहीं है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि आलाकमान गहलोत के रवैये से नाराज हैं, जिन्हें लगता है कि इस घटनाक्रम के पीछे उनका हाथ है, लेकिन गहलोत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले से उनका कोई सरोकार नहीं है। अजय माकन ने इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के विधायकों के रवैये पर नाराजगी प्रकट की और कहा कि विधायकों की बैठक में न आकर इसके समानांतर बैठक करना प्रथम दृष्टि में अनुशासनहीनता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने कहा,
वहाँ के MLAs के जज्बात और उनके एहसासात की इज्जत करनी चाहिए। वहाँ के MLA जो चाहते हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उसे मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। गलत फैसला कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुँचाएगा। राजनीति शतरंज के खेल की तरह है, जहाँ एक गलत चाल जीत और हार का फैसला कर देती है।
राजस्थान में ये राजनीतिक संकट ऐसे समय में शुरू हुआ है जब ये पार्टी अपने नए अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियां कर रही है और राहुल गांधी भारत जोड़ो पद यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। उधर भाजपा ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगने के संकेत दिए हैं। राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी राजनीतिक ड्रामे के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि इस्तीफे का सियासी पाखंड चल रहा है और स्थिति काफी अनिश्चित है।
राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा,
जब पूरे मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे ही दिया है तो अकेले मुख्यमंत्री क्या करेंगे। ऐसे समय में मुख्यमंत्री जी को मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाकर सदन को भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए, अगर उनमें हिम्मत है तो।
शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब प्रस्तुत है इमाम रजा अलैहि सलाम की शहादत पर विशेष कार्यक्रम।
Thank you. प्रिय श्रोताओ, इमाम अली रजा अलैहि सलाम की शहादत के दुखद अवसर पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। इस दुखद अवसर पर आप सबकी सेवा में हार्दिक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। मोहम्मद मेहती का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओ, सफर महीने की अंतिम तारीख को पैगम्बर इस्लाम के पौत्र इमाम अली रजा अलैहि सलाम शहीद हुए थे। ईरान के मशहद नगर में उनका पवित्र रोजा है। आज पूरा ईरान शोकाकुल है। आज उनका पूरा रोजा ईरानी और गैर ईरानी श्रद्धालुओं से भरा है। कुछ श्रद्धालु पवित्र रोजे के अंदर पवित्र कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जबकि कुछ दुआ और जियारत पढ़ रही हैं। इमाम रजा अलैहि सलाम के रोजे के प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि कोरोना वायरस से पहले प्रतिवर्ष 3 करोड़ ईरानी और गैर ईरानी श्रद्धालु इमाम अली रजा अलैहि सलाम की जियारत के लिए आते थे। गैर ईरानी श्रद्धालुओं में सबसे अधिक संख्या इराकी श्रद्धालुओं की होती है और ये संख्या इतनी अधिक है कि इमाम रजा अलैहि सलाम के एक प्रांगण को इराकी व अरब श्रद्धालुओं के लिए विशेष कर दिया गया है। ज़ियारत मासूमों से संपर्क स्थापित करने का एकमात्र साधन नहीं है, ज़ियारत प्रेम व निष्ठा जाहिर करने का एक साधन है। जो इंसान ज़ियारत करता है वो ज्ञान, तत्वदर्शिता और दूसरे सद्गुणों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। इसलिए मासूमों के पावन रोजे सदैव आश्रय स्थल की भूमिका निभाते रहे। इमाम अली रजा अलैहि सलाम फरमाते हैं, ईश्वर उस इंसान पर दया व कृपा करे जो हमारे आदेशों को जिंदा करे। इस पर इमाम से पूछा गया कि किस तरह आपके आदेशों को जिंदा किया जाएगा, तो इमाम ने इस प्रश्न के उत्तर में फरमाया, जो हमारे ज्ञान को हासिल करे और उसके बाद लोगों को सिखाए, इस तरह उसने हमारे आदेश को जिंदा किया। प्रेम, कृपा और दया इमाम रजा अलैहि सलाम की एक विशेषता थी। यहाँ तक कि जो लोग मुसलमान नहीं होते थे वे भी इमाम की शरण और उनकी सेवा में आते थे। ईश्वरीय धर्म इस्लाम की एक शिक्षा इंसानों की सेवा और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। इसी बात को दृष्टि में रखकर पैगंबर इस्लाम और उनके पवित्र परिजन उन लोगों की भी ज़रूरतों को पूरा करते थे जो मुसलमान नहीं होते थे। दूसरे शब्दों में मासूमों का ये कार्य भी ईश्वरीय उपासना है, क्योंकि मासूम का हर कार्य उपासना होता है और मासूम वो कार्य अंजाम ही नहीं देता जो उपासना न हो। इमाम रजा अलैहि सलाम वाजिब व अनिवार्य कार्यों को अंजाम देने के बाद किसी काम को दूसरे मोमिनों को खुश करने से बेहतर नहीं समझते थे। एक स्थान पर इमाम अली रजा अलैहि सलाम फरमाते हैं, एक दूसरे से मुलाकात के लिए जाओ ताकि एक दूसरे से प्रेम करो और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ और एक दूसरे से गुस्से न हो। इमाम रजा अलैहि सलाम एक स्थान पर फरमाते हैं, हर इंसान की शोभा उसकी बुद्धि है। ज्ञान से इंसान की बुद्धि बढ़ती है। इस आधार पर इंसान को चाहिए वो स्वयं को ज्ञान के आभूषण से सुसज्जित करे। इमाम फरमाते हैं, ज्ञान मोमिन की खोई हुई चीज है जो विलायत के बाग में खो गई है। इसी तरह हदीसों में सवाल करने को ज्ञान की कुंजी बताया गया है और कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में 4 लोगों को प्रतिदान दिया जाएगा, एक सवाल करने वाले को, दूसरा उसका जवाब देने वाले को, तीसरा सवाल का जवाब सुनने वाले को और चौथा जो इन 3 को दोस्त रखता होगा। ज्ञान प्राप्त करने को हज और जिहाद से भी अफजल बताया गया है और हदीसों में यह भी बयान किया गया है कि ज्ञान प्राप्त करने वाले के लिए वृक्ष, हवा, बादल, समुद्र, समुद्र के अंदर की मछलियां, तारे, वनस्पतियां और हर वो चीज ईश्वर से मगफरत व क्षमा याचना करती है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि विद्वान उपासक से श्रेष्ठ होता है, जिस तरह से 14वीं का चांद तारों से बेहतर होता है। विद्वानों को पैगंबरों का वारिस व उत्तराधिकारी बताया गया है, क्योंकि पैगंबर दीनार और दिरहम विरासत में नहीं छोड़कर जाते, वे ज्ञान को विरासत में छोड़कर जाते थे। और जिसने भी पैगंबरों की विरासत से लाभ उठाया वो लोक परलोक दोनों में बहुत लाभान्वित हुआ। यहाँ एक रोचक बात यह है कि पैगंबर इस्लाम की हदीस में है कि ज्ञान प्राप्त करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर अनिवार्य है। इससे ये बात पूरी तरह साफ है कि महिलाओं पर भी ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में ईश्वरीय धर्म इस्लाम शिक्षित समाज देखना चाहता है, वो समाज के हर व्यक्ति को शिक्षित देखना चाहता है। आज बहुत से देशों, संस्थाओं व संगठनों में ज्ञान प्राप्त करने को महिला और पुरुष का अधिकार बताया गया है, न कि अनिवार्य। अधिकार और अनिवार्य में अंतर यह है कि इंसान अपने अधिकार को छोड़ सकता है और अधिकार छोड़ने पर उससे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, जबकि अनिवार्य कार्य ऐसा नहीं है। अगर दुनिया के मुसलमान पैगंबर इस्लाम की इस हदीस पर अमल करते तो आज कोई भी समाज उन पर शासन नहीं कर सकता था। दुनिया के बहुत से स्थानों पर मुसलमानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो न होता। अगर सारे मुसलमान ज्ञान प्राप्त करते तो आज मानव समाज का स्वरूप ही कुछ और होता। आज मुसलमान जिन बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनमें से बहुत सी समस्याएं अस्तित्व में ही न आती। दूसरे शब्दों में बहुत सी समस्याएं अज्ञानता की उपज हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक उपाधि आलिमे आले मोहम्मद है, यानी आले मोहम्मद का ज्ञानी। पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों की एक विशेषता ये रही है कि वे अपने समय के सबसे बड़े ज्ञानी होते थे। दूसरे शब्दों में वे सब के सब पैगंबर इस्लाम के उत्तराधिकारी थे, ज्ञान के प्रज्वलित दीप थे, ज्ञान के अथाह सागर थे। उन्हें हर चीज का ज्ञान था। जिसने भी उनके ज्ञान से लाभ उठाया उसने लोक परलोक में अपने जीवन को सफल बना लिया। उनसे जब भी सवाल किया गया कभी भी नहीं कहा कि इसका जवाब मुझे नहीं पता। ज्ञान वो प्रकाश है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि उसके प्रभावों व नतीजों को देखा जा सकता है। जिस तरह से बिजली को आज तक किसी ने भी अपनी आंख से नहीं देखा कि वो किस रंग की होती है, लेकिन बिजली के प्रकाश और दूसरे प्रभावों को जीवन के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। अगर ध्यान से देखा व सोचा जाए तो बिजली भी ज्ञान की ही उपज है। ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता के अंधेरे को मिटाया जा सकता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने ज्ञान के प्रकाश से ही समाज में फैली गुमराहियों को दूर करने का अथक प्रयास किया था। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम के हवाले से एक स्थान पर फरमाते हैं, जो ज्ञान के बिना फतवा दे और धार्मिक मामलों में विचार व्यक्त करे तो उस पर जमीन और आसमान के फरिश्ते लानत भेजते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम विनम्रता को ज्ञान का एक चिन्ह और मौन को तत्व आदर्शिता का एक रत्न बताते हैं। इसी प्रकार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मौन को दोस्ती का कारण और हर भलाई का मार्गदर्शक बताते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के काल को विभिन्न धर्मों के मध्य संवाद का काल कहा जाता है। मामून अब्बासी खलीफाओं में सबसे शिक्षित था। वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए विभिन्न धर्मों के विद्वानों को बुलाकर मुनाजरा व शास्त्रार्थ करवाता था। इस कार्य से मामून का एक लक्ष्य लोगों में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो छवि थी उसे वो खराब करना चाहता था, पर उसके प्रयासों का उल्टा परिणाम निकला। मामून के कार्यों से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हस्ती और अधिक स्पष्ट हो गई और विभिन्न क्षेत्रों व समाजों के लोग इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सेवा में हाजिर होकर उनके ज्ञान के अथाह सागर से अपनी प्यास बुझाने लगे। मामून ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मांग की कि वो उसके लिए इस्लाम का सारांश लिख दें। इसलिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की मूल शिक्षाओं को एक किताब के रूप में लिखा, जो रिसाले ज़हबिया के नाम से मशहूर है। امام رضا علیہ السلام کے سدگڑوں اور ان کے مہان استھان کے درشٹگت ان کا پاون روزہ کیول ایک درشن استھل نہیں ہے بلکہ پاون روزے کے چاروں طرف وبھن وشیشتاؤں کے ساتھ وبھن بڑے بڑے پرانگڑ بھی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے روزے کے ایک پرانگڑ میں ایک بڑا پستکالیہ ہے، اس پرکار سے کہ اس پستکالیہ کی گڑنا ایران کے بڑے پستکالیوں میں ہوتی ہے۔ اس پستکالیہ میں جن کتابوں اور دستاویزوں کو رکھا گیا ہے ان میں سے کچھ کا سمبند 1200 سال پہلے سے ہے۔ یہ پستکالیہ شیخ توسی پرانگڑ کے اتر میں ہے۔ آٹھویں امام کا نام علی ہے، رضا ان کی سب سے پرسدھ اپادھی ہے۔ اس کا ایک کارن یہ بتایا جاتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام آسمان میں ایشور کے پسندیدہ تھے جبکہ زمین میں پیغمبر اسلام کے پسندیدہ تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے 20 برسوں تک لوگوں کے مارگ درشن کا ایشوریہ دائتو سنبھالا، یعنی ان کی امامت 20 سالوں تک تھی۔ سمے کے اتیاچاری شاسک ماموں نے جب دیکھا کہ لوگ امام رضا علیہ السلام سے بہت شردھا رکھتے اور پریم کرتے ہیں تو وہ اپنی سرکار کو لے کر بھیبیت ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ کہیں اس کی سرکار کا انت نہ ہو جائے۔ دوسرے شبدوں میں امام رضا علیہ السلام کے پاون استتو کو وہ اپنی سرکار کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھنے لگا اور ایک شڈیانتر رچ کر اس نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کروا دیا اور ان کے پارتھیو شریر کو مشہد میں دفن کر دیا گیا۔ شوتو، یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کے پوتر نگر مشہد میں امام رضا علیہ السلام کا پوتر روزہ ہے اور پراچین سمے سے یہ نگر درشنی استھل رہا ہے۔ مورکو کے پرسدھ پریٹک ابن بطوتا نے بھی پوتر نگر مشہد کی یاترا کی ہے۔ جن استھانوں کو اس نے دیکھا ہے ان میں سے ایک امام رضا علیہ السلام کا پوتر روزہ ہے۔ وہ اس روزے کی وشیشتاؤں کے بارے میں لکھتا ہے، امام رضا علیہ السلام کے پوتر روزے میں ایک بڑا گنبد ہے اور اس گنبد کے نیچے امام رضا علیہ السلام کی پاون سمادھی ہے اور روزے کے کنارے ایک مسجد اور دھارمک شکشا کیندر ہے۔ بہرحال جب شیعہ امام رضا علیہ السلام کی پاون سمادھی کی زیارت کرتے ہیں تو ان پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ تو شوتو، امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے دکھد اوسر پر ایک بار پھر آپ سب کی سیوا میں ہاردک سمبیدنا پرستود کرتے ہیں۔
دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا اور پرستوت ہے کارکرم وشو درپن۔
दोस्तों, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक अधिवेशन में राष्ट्रपति रईसी द्वारा दिए गए भाषण के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा, हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का 77वां वार्षिक अधिवेशन न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में जारी है। इस वार्षिक सत्र में इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी भी भाग लेने पहुंचे हैं। वहीं यूएन महासचिव ने महासभा के 77वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के उद्घाटन दिवस पर विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए सचेत किया, हमारा विश्व एक बेहद बड़ी मुश्किल में है। विभाजन गहरे हो रहे हैं, विषमताएं ज्यादा चौड़ी हो रही हैं, चुनौतियां तेजी से फैलती जा रही हैं।
Our world is in peril and paralyzed. Geopolitical divides are undermining the work of the Security Council, undermining international law, undermining trust and people's faith in democratic institutions, undermining all forms of international cooperation. We cannot go on like this. Even the various groupings set up outside the multilateral system by some members of the international community have fallen into the trap of geopolitical divides like in the G20. At one stage, international relations seem to be moving towards a G2 world.
एंटोनी गुटेरेस ने कहा कि हमें आशा की आवश्यकता है, हमें हर तरफ कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम उथल पुथल भरे समुद्र में हैं, वैश्विक असंतोष का कठिन दौर क्षितिज पर दिख रहा है, जीवन व्यापन की कीमत का संकट उफान पर है, भरोसा धड़क रहा है, हमारा ग्रह जल रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के 77वें वार्षिक सत्र में बोलते हुए अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पिछले एक वर्ष से दुनिया अनगिनत कठिनाइयों का सामना कर रही है, चरम मौसम घटनाओं से लेकर कोविड-19 महामारी और भोजन व ईंधन की कमी तक। उन्होंने रूस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य ने अपने पड़ोसी पर धावा बोल दिया, एक संप्रभु देश को मानचित्र से मिटा देने का प्रयास किया गया।
In the last year, our world has experienced great upheaval. A growing crisis in food insecurity. Record heat, floods, and droughts, COVID-19, inflation, and a brutal, needless war. A war chosen by one man, to be very blunt. Let us speak plainly. A permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase a sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter.
उन्होंने कहा कि रूस ने बेशर्मी से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 77वें वार्षिक अधिवेशन में सबसे ज्यादा अगर किसी पर दुनिया की नजर थी तो वो ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी पर। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही दोहरी नीतियों और व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से घोषित करता हूं कि इस्लामिक गणतंत्र ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की इच्छा नहीं रखता है और ऐसे महाविनाशी हथियार हमारे रक्षा सिद्धांत में कोई स्थान नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का यही रुख है और इस तथ्य के बावजूद कुछ देशों की सरकारें परमाणु हथियारों का उत्पादन और प्रयोग जारी रखे हुए हैं, वो अन्य देशों को उपहार के रूप में भेंट करते हैं। राष्ट्रपति रईसी ने ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों के पश्चिमी देशों के इस रवैये को दोहरे मानकों वाला रुख करार देते हुए इसे अन्याय का प्रदर्शन बताया। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने जनरल असेंबली में अपने संबोधन के दौरान कहा कि अमेरिका की हस्तक्षेप पूर्ण और जोर जबरदस्ती की नीतियों के मुकाबले में ईरान ने भरपूर प्रतिरोध का प्रदर्शन किया है। यूएन अधिवेशन में ईरानी राष्ट्रपति के भाषण का सबसे ज्यादा चर्चा में वो भाग रहा जब उन्होंने ईरान के महान योद्धा शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर हाथों में लेकर उनके हथियारों को सजा दिलाने के लिए ईरान के दृढ़ संकल्प की बात दोहराई।
फरमानदेही व कहरमान इन जंग अलैह टेररिस्ट व नाबूद कुनंदे दाएश किसी नबूद जज सरदार सपहबुद हाज कासिम सुलेमानी।
राष्ट्रपति रईसी ने भाषण के दौरान शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के फोटो को दिखाते हुए कहा कि दुनिया के दूसरे कोने में बसने वाली एक सरकार ने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को बदलने की योजना बनाई थी जिसे शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की कमान में ईरानी जियालों ने नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद करने की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आपराधिक कार्रवाई को न्यायपूर्ण अदालती व्यवस्था में उठाकर दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश जारी जारी रखेंगे। राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय और इंसाफ की स्थापना का समर्थन करता है क्योंकि इंसाफ से एकता बनती है और अत्याचार से जंग की आग भड़कती है। राष्ट्रपति रईसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय की स्थापना की मांग ने दुनिया के सामने एक बेहतरीन नजरिया पेश किया है। इस बारे में तेहरान में रहने वाले पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक टीकाकार राशिद अब्बास नकवी से जब ये सवाल किया गया कि वो राष्ट्रपति रईसी की न्यूयॉर्क यात्रा और उनके संबोधन को कितना कामयाब देखते हैं, तो उन्होंने कहा,
ईरान की एक बड़ी कामयाब सिफारतकारी है, यानी वो ईरान के जिसे अमेरिका और साम्राज्यी ताकतों ने ये कोशिश की थी कि उसको बिल्कुल दीवार से लगा दें और उसको ऐसा एक मुल्क बना दें कि लोग उनसे मिलना, उनके हुक्काम से गुफ्तगू करना, उनके करीब आना जो है वो एक गोया उनको एक शजर ममनुआ बना के कोशिश की गई थी और बड़ी भरपूर कोशिश थी। आप अगर माजी में देखें और अब भी देखें, अब भी उनके रवैयों से ऐसा अंदाज़ा होता है कि वो ईरान को एक अलग थलग करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। कोई मसला, कोई मौजू ऐसा नहीं होता कि जिसमें वो ईरान को डिट्रैक करते हैं, कहीं पे उनको किसी और अंदाज से उनके साथ रवैये रखते हैं कि जिससे कि आलमी सतह को ये पैगाम जाए कि ये लोग अपने दायरे के अंदर हैं, एक कुएं के अंदर हैं, इनके कोई असूल और जवाबित नहीं है, ये आलमी जो ताल्लुकात के जो असूल और कवानीन हैं उनसे आगाह नहीं है। यानी एक ऐसा मुल्क बनाने की कोशिश करते हैं कि जो इनकलाब के बाद एक बड़ा एक महदूद से नज़रियात और एक ख़ास सरहदों के अंदर महदूद है और फलां फलां फलां, लेकिन जब भी इस्लामी जमहूरी ईरान का कोई नुमाइंदा, कोई शख्सियत, चाहे वो इनफरादी तौर पे किसी मुल्क में जाती है या इस तरह के किसी इंटरनेशनल और बैन अल-अक़वामी इजलासों में जाती है, तो जो मुलाकातों की रेशो होती है वो कई ममालिक से कि जो बज़ाहिर बड़े मजबूत भी हैं, एक्टिव भी हैं, उनको सिफारती मैदान में भी बहुत सारी आसानियां मुयस्सर हैं, वो ईरान के मुकाबले में उनकी मुलाकातों की तादाद या मुलाकातों में होने वाला जो एजेंडा है उसमें चीज़ें जो सामने आती हैं वो बड़ी भरपूर होती हैं। और इसमें देखें, जनरल असम्बली बज़ाहिर तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसके कोई मसलन कोई कानूनी हैसियत हो और उसमें की गई बात कोई कानून का दर्जा रखती हो या उसको बाद में कहीं पे किसी करारदाद की सूरत में या किसी उसमें आए, नहीं, वो एक जिसे कहते हैं कि एक आलमी सिफारती मेला है जिसमें हर कोई आके अपनी बात करता है। लेकिन इसका जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदा यही है कि वो बातें कि जो इंटरनेशनल मीडिया अपने मखसूस तासुब या सिहूनी लाबी के दबाव की वजह से ईरान के बारे में या ईरान के हुकाम की नशर नहीं करता, यहाँ पे मजबूर हो जाता है कि जब जनरल असम्बली में वो बात होती है, अलबत्त उसको एंगलिंग करते हैं अपनी मर्जी से, जिसे कहते हैं वो बयान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे हकायक जो हैं वो इस तरह पहुंच जाते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि बहुत ही मुअसर तकरीर थी आगे रईसी की, और उससे पहले जो मुलाकातें हैं उसके जो आउटपुट सामने आ रहे हैं या ख़ासकर जो मीडिया से उनका है, हत्ता मुख्तलिफ अदियान के लोगों से भी जो उन्होंने बात की है, यानी जब से आए रईसी गए हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन चंद सरबराहान मम्लिकत में शामिल हैं कि जिनको मीडिया ज्यादा कवरेज दे रहा है।
वहीं राष्ट्रपति रईसी द्वारा महासभा में शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर को दिखाया जाना और उसके बाद इस घटना की पूरी दुनिया में हो रही चर्चा के बारे में जब हमने पवित्र नगर कुम में रहने वाले राजनीतिक टीकाकार मीसम हमदानी से पूछा तो उन्होंने कहा,
उसमें खसूसन इस हवाले से कि जो शहीद कासिम सुलेमानी के हवाले से शहीद कासिम सुलेमानी की तस्वीर डॉक्टर रईसी ने दिखाई और उस पर उन्होंने गोया एक किस्म का अक़वाम आलम के सामने अपना इंतहाई, आप जिसको कह लें कि ह्यूमन राइट का बुनियादी तरीन मसला या अपनी बुनियादी तरीन एक मुतालबा उनके सामने रखा कि एक ऐसे इंसान को कि जो دہشت گردوں کے مقابلے میں جدوجہد کر رہا تھا، ایسا انسان کہ جو انسانوں کی، عام عوام کی جائے جان کو بچانے کی خاطر کوشش کر رہا تھا، اور اس کو اس طرح ماورائے عدالت قتل کیا گیا. ماورائے عدالت غیر قانونی طریقے سے جو ہے، وہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ آتا ہے اور اس کی ذمہ داری وہ لیتا ہے اپنے کندھوں کے اوپر اس دہشت گردی کی. تو ایک یہ دیکھیں نا، اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں تو بالکل ایک بنیادی ترین مطالبہ ہے کہ ہمیں اس پہ انصاف چاہیے. انصاف کا تقاضا کیا، عدالتی نظام کے ذریعے انصاف چاہیے. خوب اگر یہ بھی کسی دنیا میں، کسی ملک میں، کسی سسٹم کے اندر اگر یہ مطالبہ بھی قابل قبول نہ ہو اور یہ مطالبہ بھی جو ہے وہ اس کو اہمیت نہ دی جائے، تو پھر جو ہے اس نظام کو، اس سسٹم کو کیسے انسانی نظام کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو بالکل 100% جنگل کا قانون ہے کہ آپ اس کے اوپر بھی بات نہ کریں. تو یہ انتہائی بنیادی اور انتہائی عقلانی اور منطقی بات ہے کہ جو ڈاکٹر رئیسی نے جو ہے وہاں پر تمام اقوام کے سامنے اس کو پیش کیا ہے.
اسلامی گڑتن ایران کے راشپتی سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران دنیا کے سبھی دیشوں، وشیش کر اپنے دوست اور پڑوسی دیشوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سہیوگ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جنگ کسی بھی معاملے کا سمادھان نہیں ہے. انہوں نے فلسطین کی استھتی کا الیکھ بھی کیا اور کہا کہ ورتمان اتہاس نے فلسطینیوں سے زیادہ مظلوم راشٹر اور اویدھ جنوشاسن سے زیادہ اتیاچاری سرکار نہیں دیکھنے کو ملے گا. راشپتی رئیسی نے کہا کہ تہران پرمانو سمجھوتا کو پنرجیوت کرنے کے لیے گمبھیر ہے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا کسی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے امریکہ کی پرتیبدھتا پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اسلامی گڑتنت ایران کے راشپتی سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ہماری ایک ہی اچھا ہے کہ پرتیبدھتاؤں کا پالن کیا جائے. انہوں نے ریکھانکت کیا کہ سمجھوتے سے امریکہ الگ ہوا تھا، نہ کہ ایران. انہوں نے سوال کیا کہ کیا ایران بنا گارنٹی اور آشواسنوں کے اس بات پر بھروسہ کر سکتا ہے کہ امریکہ اس بار بھی اپنی پرتیبدھتاؤں کو پورا کرے گا. دوستو، ہمارے کاریکرم کا سمے یہیں سماپت ہوتا ہے، ہمیں انمتی دیں.
دوستو، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا، اور سمے ہو چکا ہے آج کے مکھیہ سماچاروں کے سار. آج کا دنگائیوں اور اپدرویوں کے ورودھ جنتا میدان میں ودیشی ایجنٹوں کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کی مانگ کی. راشٹرپتی رئیسی نے اسپتال میں گھائلوں کا حال چال پوچھا. بھارت سہت دنیا کے 32 دیشوں نے سرکشا پریشد کے ڈھانچے پر اٹھائے سوال، اور پاکستان میں سینا کا ہیلی کاپٹر درگھٹنا کا شکار ہوا. دوستوں، ہمیں آشا ہے کہ ہمارا یہ پرسارن بھی آپ کو سدا کی بھانتی پسند آیا ہوگا. کاریکرموں کے بارے میں اپنے وچاروں ایوم پرتکریاؤں سے ہمیں اوش اوگت کرائیے گا. تو اسی کے ساتھ اختر عباس اور ساتھیوں کو انمتی دیں. خدا حافظ. Thank you.
ہوں۔